एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपकी दूसरी साथी। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जो लगभग 2300 साल पुरानी है, लेकिन जिसके विचार आज भी गूंजते हैं।
हाँ बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं अरस्तु यानी एरिस्टोटल की और उनकी महान कृति पॉलिटिक्स की। ये वो किताब है जिसने पश्चिमी राजनीतिक सोच की नींव रखी।
सही कहा, और सुनने में शायद ये थोड़ा भारी लगे कि भई पुरानी किताब है, दर्शन है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अरस्तु ने जो सवाल उठाए थे कि एक अच्छा समाज कैसा हो, नागरिक होने का क्या मतलब है, सरकार का असली मकसद क्या होना चाहिए, वो आज भी उतने ही, शायद पहले से ज्यादा अहम है।
हाँ ये बात तो है। आज की राजनीति में जो हम उथल पुथल देखते हैं या जो बहसें चलती हैं अच्छे शासन पर, कहीं ना कहीं उनकी जड़ें अरस्तु तक जाती हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस महान दार्शनिक के मतलब जटिल लगने वाले विचारों को आसान भाषा में समझें।
और देखें कि क्या उनके नुस्खे आज भी हमारे कुछ काम आ सकते हैं।
चलिए तो फिर इस सफर की शुरुआत करते हैं खुद अरस्तु से। कौन थे ये शख्स जिन्होंने राजनीति पर इतनी गहरी छाप छोड़ी?
अरस्तु मतलब 384 से 322 ईसा पूर्व प्राचीन यूनान के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे। वो महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे और करीब 20 साल तक प्लेटो की अकादमी में पढ़े भी।
20 साल, लंबा समय।
हाँ, लेकिन वो सिर्फ अपने गुरु की परछाई बनकर नहीं रहे। उनकी अपनी एक खास पहचान थी, एक अलग तरीका था सोचने का।
हाँ मैंने पढ़ा है कि उनका तरीका बहुत जमीनी था। मतलब प्लेटो जहां अक्सर आदर्श राज्यों की कल्पना में खोए रहते थे, वहीं अरस्तु ने असल दुनिया का जायजा लिया।
बिल्कुल, उन्होंने एथेंस में अपना स्कूल खोला, लाइसियम, और वहां एक कमाल का प्रोजेक्ट चलाया, अपने समय के 158 अलग अलग यूनानी नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया।
158, वो भी उस जमाने में, ये तो कमाल है।
हाँ, यही चीज उन्हें बहुत व्यवहारिक बनाती है। वो सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि तथ्यों और अनुभव के आधार पर बोल रहे थे।
और उनका अनुभव सिर्फ किताबी नहीं था, है ना?
हाँ
वो सिकंदर महान के गुरु भी रहे थे।
जी हाँ, कुछ समय के लिए मकदूनिया के राजकुमार यानी भविष्य के सिकंदर महान के गुरु भी रहे। तो सोचिए, दुनिया जीतने वाले सिकंदर को पढ़ाने वाले अरस्तु को सत्ता और शासन की कितनी सीधी मतलब व्यवहारिक समझ मिली होगी।
सही बात है।
वो राज्य को एक जीवित शरीर की तरह देखते थे जिसके अलग अलग हिस्सों का विश्लेषण किया जा सकता है। उनकी किताब पॉलिटिक्स असल में उनकी नैतिकता पर लिखी किताब निकोमैकियन एथिक्स का ही, कह सकते हैं, अगला कदम है।
अच्छा, मतलब एथिक्स और पॉलिटिक्स जुड़ी हुई हैं।
हाँ, बहुत गहराई से। एथिक्स में वो पूछते हैं कि एक व्यक्ति के लिए अच्छा जीवन क्या है, और पॉलिटिक्स में वो इसी सवाल को पूरे समाज, पूरे समुदाय के लिए पूछते हैं।
तो ये किताब पॉलिटिक्स आखिर है किस बारे में? इसका सार क्या है अगर आसान शब्दों में कहें तो?
असल में पॉलिटिक्स यूनानी नगर राज्य, जिसे वो पॉलिस कहते थे, उसकी प्रकृति की एक बहुत ही व्यवस्थित मतलब एक सिस्टमैटिक पड़ताल है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि सरकारें कैसी होती हैं, बल्कि ये तर्क भी देती है कि सबसे अच्छी सरकार कौन सी हो सकती है, आदर्श रूप में भी और व्यवहारिक रूप में भी।
और इसका सबसे बुनियादी तर्क क्या है, वो सेंट्रल आइडिया?
अरस्तु का मानना था कि इंसान स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है, जिसे उन्होंने जून पॉलिटिकॉन कहा। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब नेता बनना चाहते हैं।
हाँ ये अक्सर गलत समझा जाता है।
बिल्कुल, इसका मतलब है कि हम अकेले अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर सकते। हम बने ही हैं समाज में, एक राजनैतिक समुदाय में रहने के लिए। हमारे पास तर्क है, भाषा है, और यही हमें क्षमता देते हैं कि हम मिलकर रहें, सही गलत पर विचार करें और एक साझा अच्छा जीवन बनाएं।
यानी उनके लिए राज्य सिर्फ भीड़ को काबू में रखने या व्यापार चलाने का जरिया नहीं था, उसका मकसद कुछ और ऊंचा था।
बिल्कुल, अरस्तु के लिए राज्य का असली मकसद है अच्छा जीवन संभव बनाना, जिसे वो यूडामोनिया कहते थे। ये सिर्फ जिंदा रहना या अमीर बनना नहीं, बल्कि नागरिकों को नैतिक और बौद्धिक रूप से बेहतर बनने का मौका देना है। यही राज्य का सबसे ऊंचा लक्ष्य है।
तो ये किताबों में कहां से कहां तक ले जाती है?
ये किताब हमें परिवार जैसी छोटी इकाई ओइकोस से शुरू करके फिर गांव और फिर नगर राज्य पॉलिस तक ले जाती है। फिर वो अलग अलग संविधानों का विश्लेषण करते हैं, राजनीतिक अस्थिरता या क्रांति के कारणों को समझते हैं और फिर एक आदर्श राज्य की परिकल्पना तक पहुंचते हैं जिसमें शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
चलिए तो अब अरस्तू के कुछ मुख्य विचारों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। किताब को 8 हिस्सों या पुस्तकों में बांटा गया है, लेकिन हमने कुछ बड़े विषयों के तहत समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राज्य की प्रकृति और उसके उद्देश्य पर अरस्तू क्या कहते हैं, ये ज़ून पॉलिटिकॉन वाली बात थोड़ी और समझाएं।
हाँ, तो अरस्तू के ये राज्य कोई अचानक बनी चीज नहीं बल्कि एक प्राकृतिक विकास है। जैसे बीज से पेड़ बनता है, वैसे ही परिवार से गांव और गांव से नगर राज्य बनता है। ये स्वाभाविक है क्योंकि इंसान, जैसा हमने कहा, ज़ून पॉलिटिकॉन है। अपनी जरूरतों और क्षमताओं को पूरा करने के लिए उसे समुदाय चाहिए। तर्क और भाषा हमें सिर्फ संवाद करने में ही नहीं बल्कि न्याय और अन्याय, अच्छे और बुरे पर मिलकर सोचने में भी मदद करते हैं, और यही साझा समझ समुदाय का आधार बनती है।
अच्छा, और इसी संदर्भ में वो दास्ता की बात भी करते हैं जो आज हमें बहुत अजीब लगती है।
हाँ, ये उनका एक विवादास्पद विचार है, प्राकृतिक दास्ता का। वो तर्क देते हैं कि कुछ लोग स्वभाव से ही नेतृत्व करने और सोचने समझने में सक्षम होते हैं, जबकि कुछ शारीरिक काम के लिए बेहतर होते हैं और उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत होती है। हालांकि ये विचार आज के मानकों पर बिल्कुल सही नहीं है, पर ये दिखाता है कि वो समाज के हर पहलू, हर रिश्ते को तर्क से समझने की कोशिश कर रहे थे उस समय के हिसाब से।
और राज्य का उद्देश्य, वो अच्छा जीवन या यूडेमोनिया, इसका मतलब क्या है व्यवहार में? सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना तो नहीं होगा?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब है कि राज्य का काम सिर्फ बाहरी दुश्मनों से रक्षा करना या आंतरिक शांति बनाए रखना ही नहीं है। उसका असली काम है नागरिकों में सद्गुणों का विकास करना, जैसे न्याय, साहस, संयम, बुद्धिमत्ता। एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग सिर्फ जिए नहीं बल्कि अच्छी तरह से जिए, अपनी नैतिक और बौद्धिक क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करें।
ये तो बहुत ऊंचा आदर्श है। आज की राजनीति में हम कितनी बार इस लक्ष्य की बात करते हैं, ज्यादातर तो अर्थव्यवस्था या सुरक्षा तक ही।
बिल्कुल, शायद इसीलिए अरस्तू आज भी प्रासंगिक है। वो हमें याद दिलाते हैं कि राजनीति का एक गहरा नैतिक आयाम भी है। अच्छा, अब नागरिकता और शासन के अलग अलग तरीकों पर आते हैं। नागरिक कौन है उनकी नजर में?
हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। क्या सिर्फ किसी शहर में रहना काफी है नागरिक होने के लिए?
अरस्तू के लिए नहीं। नागरिक होना सिर्फ किसी जगह रहना नहीं है। नागरिक वो है जो राज्य के न्यायिक कामों और शासन संबंधी फैसलों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, मतलब जो शासन करने और शासित होने दोनों भूमिकाओं में सक्षम हो।
शासन करने और शासित होने वाले, ये महत्वपूर्ण है।
हाँ, अब ये सच है कि उनकी ये परिभाषा उस समय महिलाओं, दासों और विदेशियों को बाहर रखती थी, जो आज हमें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। लेकिन मूल विचार ये है कि नागरिकता एक सक्रिय भूमिका है, सिर्फ एक पहचान नहीं, आपको भाग लेना होता है।
और सरकारें कितनी तरह की हो सकती हैं? उनका वो प्रसिद्ध वर्गीकरण क्या है जो अक्सर पढ़ा जाता है?
हाँ, वो बहुत मशहूर है। अरस्तू ने सरकारों को दो आधारों पर बांटा। पहला, कितने लोग शासन करते हैं, एक, कुछ या अनेक, और दूसरा, क्या वो सबके भले के लिए शासन करते हैं या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
अच्छा, तो सही रूप कौन से हैं?
दूसरा, अभिजात तंत्र, अरिस्टोक्रेसी, जब कुछ गुणी और श्रेष्ठ लोग, मतलब जिनमें योग्यता हो, वो सबके भले के लिए शासन करें। और तीसरा, पॉलिटी, जब अनेक नागरिक, खासकर मध्यम वर्ग, मिलकर सबके भले के लिए शासन करें। ये उनका पसंदीदा व्यवहारिक रूप था।
और इनके बिगड़े हुए रूप, जब शासक स्वार्थी हो जाएं?
वो भी तीन है, इन्हीं के बिगड़े रूप। राजतंत्र का बिगड़ा रूप है निरंकुशता, टायरनी, जहां शासक सिर्फ अपने हित साधता है क्रूरता से। अभिजात तंत्र का बिगड़ा रूप है गुटतंत्र, ओलिगार्की, जहां अमीर सिर्फ अपने फायदे के लिए शासन करते हैं गरीबों की परवाह किए बिना। और पॉलिटी का बिगड़ा रूप है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जहां गरीब बहुमत सिर्फ अपने हितों के लिए शासन करता है। यहां ये ध्यान रखना जरूरी है कि अरस्तू के समय में डेमोक्रेसी का मतलब अक्सर भीड़ तंत्र या अव्यवस्था से लिया जाता था, जो आज की हमारी संवैधानिक लोकतंत्र की समझ से थोड़ा अलग है।
ये फर्क समझना जरूरी है। और इन सब में वो कानून को कहां रखते हैं?
सबसे ऊपर। अरस्तु कानून के शासन को बहुत महत्व देते हैं। उनका मानना था कि कानून का राज किसी भी व्यक्ति के राज से बेहतर है, चाहे वो कितना भी गुणी क्यों ना हो, क्योंकि कानून भावनाओं से परे होता है। वो एक तरह का बिना जुनून वाला तर्क है। ये स्थिरता और निष्पक्षता लाता है।
इस वर्गीकरण में एक और दिलचस्प बात है, पॉलिटी और लोकतंत्र में फर्क। आज तो हम लोकतंत्र को सबसे अच्छा मानते हैं, अरस्तु पॉलिटी को क्यों बेहतर मानते थे?
हाँ, ये थोड़ा समझने वाला है। अरस्तु जिस डेमोक्रेसी की आलोचना करते हैं, वो असल में वो रूप था जहाँ अनियंत्रित बहुमत का शासन हो, जहाँ शायद पढ़े लिखे और संपत्ति वाले लोगों की बात अनसुनी कर दी जाए और सिर्फ गरीबों के तात्कालिक हितों का ध्यान रखा जाए। इससे अस्थिरता पैदा हो सकती है। वो पॉलिटी को ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो लोकतंत्र और धनिक तंत्र का एक संतुलित मिश्रण था।
संतुलित मिश्रण कैसे?
पॉलिटी में दोनों के अच्छे तत्व होते थे, जैसे ज्यादा लोग शासन में भाग लेते थे लोकतंत्र की तरह, लेकिन शायद कुछ पदों के लिए संपत्ति या योग्यता की शर्तें होती थीं धनिक तंत्र की तरह, और सबसे जरूरी ये मध्यम वर्ग पर आधारित होती थी।
अच्छा, मध्यम वर्ग। ये हमें अगले महत्वपूर्ण विषय पर लाता है, राजनीतिक स्थिरता। अरस्तु के अनुसार समाज में स्थिरता कैसे आती है और क्रांतियां या उथल पुथल, जिसे वो स्टैसिस कहते थे, वो क्यों होती हैं?
ये तो आज के लिए भी शायद सबसे बड़ा सवाल है।
बिल्कुल।
अरस्तु ने इस स्टैसिस का बहुत गहरा विश्लेषण किया। उनका मानना था कि क्रांति का सबसे बड़ा मूल कारण है असमानता की भावना। जब समाज के किसी बड़ी समूह को लगता है कि सत्ता, सम्मान या संपत्ति के बंटवारे में उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रहा है, तो विद्रोह की जमीन तैयार हो जाती है। ये सिर्फ गरीबी नहीं बल्कि सापेक्षिक वंचना, मतलब दूसरों की तुलना में खुद को वंचित महसूस करना ज्यादा खतरनाक है।
इसके कुछ उदाहरण उन्होंने दिए अलग अलग शासन प्रणालियों में।
हाँ बिल्कुल, जैसे लोकतंत्र में वो कहते हैं अक्सर जनोत्तेजक नेता यानी डेमोगॉग गरीबों को अमीरों के खिलाफ भड़काकर सत्ता हासिल करते हैं और अस्थिरता पैदा करते हैं। वहीं धनिक तंत्र में या तो अमीर लोग गरीबों का इतना दमन करते हैं कि वो भड़क उठते हैं, या फिर अमीर गुटों में ही सत्ता के लिए लड़ाई छिड़ जाती है जो शासन को कमजोर कर देती है।
तो स्थिरता के लिए क्या जरूरी है, क्या नुस्खा है अरस्तु का?
अरस्तु का जोर हमेशा संतुलन मतलब मॉडरेशन पर था, और यही उनकी सबसे मशहूर सलाह आती है, मध्यम वर्ग की भूमिका। उनका मानना था कि जिस राज्य में एक बड़ा और मजबूत मध्यम वर्ग होता है वो सबसे ज्यादा स्थिर होता है।
क्यों? मध्यम वर्ग में ऐसा क्या खास है?
क्योंकि मध्यम वर्ग न तो अमीरों की तरह बहुत ज्यादा अभिमानी या सत्ता का भूखा होता है, न ही गरीबों की तरह बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु या हताश होता है कि सब कुछ उलट पुलट कर दे। वो आम तौर पर कानून का सम्मान करता है और व्यवस्था बनाए रखना चाहता है क्योंकि उसी में उसका हित है। इसलिए अरस्तु के हिसाब से सबसे अच्छा व्यवहारिक शासन पॉलिटी है जो इसी मध्यम वर्ग पर आधारित हो।
तो मध्यम वर्ग एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है।
हाँ कह सकते हैं, वो समाज के दो छोरों के बीच संतुलन बनाता है। इसके अलावा वो शासकों को संयम बरतने, कानून का पालन करने और समाज के किसी भी वर्ग को बहुत ज्यादा शक्तिशाली या बहुत ज्यादा वंचित न होने देने की सलाह देते हैं, मतलब अति से बचना है।
यानी संतुलन ही कुंजी है।
हाँ,
और आखिर में अरस्तु एक आदर्श राज्य की तस्वीर भी खींचते हैं और उसमें शिक्षा की भूमिका पर बहुत जोर देते हैं। ऐसा क्यों? शिक्षा इतनी जरूरी क्यों है उनके लिए?
हाँ, अपनी किताब के आखिरी हिस्सों में वो सैद्धांतिक सवाल पर लौटते हैं कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। उनके लिए आदर्श राज्य वो है जो नागरिकों को सबसे गुणी और सुखी जीवन जीने में मदद करे, वो यूडेमोनिया हासिल करने में। इसके लिए कुछ बाहरी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे सही आकार की आबादी, न बहुत बड़ी कि लोग एक दूसरे को जाने ही नहीं, न बहुत छोटी कि आत्मनिर्भर ना हो पाए। सुरक्षित और आत्मनिर्भर क्षेत्र भी चाहिए।
और नागरिक कैसे होने चाहिए?
नागरिक ऐसे हों जिनमें भावना और बुद्धि का संतुलन हो, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नागरिकों का चरित्र, क्योंकि राज्य का चरित्र उसके नागरिकों के चरित्र से ही बनता है और चरित्र बनता है शिक्षा से।
किस तरह की शिक्षा की बात कर रहे हैं? वो सिर्फ पढ़ना लिखना
नहीं, उससे कहीं ज्यादा। अरस्तु एक सार्वजनिक और सबके लिए समान शिक्षा प्रणाली की वकालत करते हैं। इसका मकसद सिर्फ रोजगार के लिए कौशल देना नहीं बल्कि पूरे इंसान का विकास करना है। शरीर का विकास व्यायाम से और मन और आत्मा का विकास संगीत, साहित्य और दर्शन से, ताकि नागरिक गुणी बन सकें।
और इसमें अवकाश का भी जिक्र आता है ना, स्कूले?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो अवकाश स्कूले के सही उपयोग पर बहुत जोर देते हैं। ये खाली बैठना या आलस नहीं है, ये वो समय है जब इंसान रोजी रोटी की चिंताओं से मुक्त होकर चिंतन, कला, संगीत और दूसरी बौद्धिक गतिविधियों में लग सके, जो अपने आप में आनंददायक और मूल्यवान है। शिक्षा का काम नागरिकों को सिर्फ युद्ध और काम के लिए नहीं, बल्कि शांति और इस तरह के सार्थक अवकाश के लिए भी तैयार करना है, क्योंकि असली अच्छा जीवन तो शांति और सार्थक अवकाश में ही जिया जा सकता है।
वाह, ये तो बहुत गहरी सोच है, खासकर आज के समय में जब हम अवकाश को अक्सर सिर्फ मनोरंजन या आराम से जोड़ते हैं। अगर हमें अरस्तु के इन तमाम विचारों से कुछ मुख्य संदेश निकालने हों आज के लिए, तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे अहम संदेश तो यही है कि राज्य एक नैतिक परियोजना है, सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं। इसका लक्ष्य सिर्फ लोगों को नियंत्रित करना या अमीर बनाना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर इंसान बनाना है, उन्हें अच्छा जीवन जीने में मदद करना है। राजनीति का एक उच्च उद्देश्य है।
दूसरा, मैं कहूंगा कानून का शासन सर्वोच्च है। किसी भी व्यक्ति की मनमानी, चाहे वो कितना भी योग्य क्यों न लगे, उससे बेहतर है कि स्थापित कानूनों का पालन हो। ये निष्पक्षता और स्थिरता लाता है। आज जब हम दुनिया भर में देखते हैं कि कैसे नियमों को ताक पर रखा जाता है, तो अरस्तु की ये बात और भी ज्यादा मायने रखती है।
तीसरा, नागरिकता एक जिम्मेदारी है, सिर्फ एक अधिकार नहीं। ये एक सक्रिय भूमिका है। सोचना, सवाल करना, बहस करना, वोट देना, समुदाय में योगदान देना, ये सब नागरिक होने का हिस्सा है। ये बात आज भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए कितनी जरूरी है, जहां कभी कभी हम नागरिक कर्तव्यों को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं।
चौथा, मध्यम वर्ग की स्थिरता में भूमिका। हालांकि आज समाज ज्यादा जटिल है, अरस्तु जैसा शायद नहीं, लेकिन ये विचार कि एक व्यापक आधार वाला संतुष्ट मध्यम वर्ग समाज को संतुलन देता है, आज भी प्रासंगिक लगता है। भारत में मध्यम वर्ग की बदलती भूमिका और आकांक्षाओं पर सोचना इस नजरिए से दिलचस्प हो सकता है, है ना?
बिल्कुल। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी, शिक्षा का केंद्रीय महत्व। नागरिक कैसे होंगे ये उनकी शिक्षा तय करती है। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली सिर्फ परीक्षा पास करने वाले या नौकरी पाने वाले लोग बना रही है, या फिर वो जिम्मेदार, विचारशील और नैतिक नागरिक भी बना रही है? अरस्तु का ये सवाल आज भी हमारे सामने एक चुनौती की तरह खड़ा है।
अरस्तु के लेखन में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं, कुछ ऐसे विचार हैं जो सदियों बाद भी गूंजते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। कुछ को फिर से याद करें।
जरूर, जैसे उनका वो प्रसिद्ध कथन कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं जी सकते। हमारी पहचान और हमारा विकास समाज से, समुदाय से जुड़ा है। हम स्वाभाविक रूप से मिलजुल कर रहने के लिए बने हैं।
या फिर कानून का शासन किसी भी व्यक्ति के शासन से बेहतर है। ये सत्ता पर अंकुश, संविधान और नियमों के सम्मान की अहमियत बताता है, एक तरह से मनमानी पर रोक।
हाँ, और एक और महत्वपूर्ण विचार, राजनीतिक समाज श्रेष्ठ कार्यों के लिए मौजूद है, ना कि केवल साथ रहने के लिए। यानी समाज का लक्ष्य सिर्फ बुनियादी जरूरतें पूरी करना नहीं है कि बस जी रहे हैं, नहीं, बल्कि उत्कृष्टता को, गुणों को बढ़ावा देना है, एक उच्च लक्ष्य है।
और ये भी कि संविधान सिर्फ नियमों का दस्तावेज नहीं, बल्कि नागरिकों की जीवन शैली है। ये कितनी गहरी बात है। ये बताता है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारे संस्थान सिर्फ नियम कानून नहीं बनाते, बल्कि वो हमारे मूल्यों, हमारी आदतों, हमारे चरित्र को भी गढ़ते हैं।
सही का। तो इन सब पुरानी लगने वाली बातों का आज के जीवन में क्या मतलब है? हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में या समाज को समझने में?
कई तरीकों से। जैसे आज हम दुनिया भर में राजनीतिक ध्रुवीकरण, मतलब समाज का दो खेमों में बढ़ जाना देखते हैं। अरस्तु का स्टेसिस यानी अस्थिरता का विश्लेषण, खासकर असमानता की भावना और गुटबाजी पर उनका जोर, हमें इन समस्याओं की जड़ों को समझने में मदद कर सकता है।
और उनकी सक्रिय नागरिकता की अवधारणा, ये हमें सिर्फ दर्शक या आलोचक बने रहने के बजाय अपने लोकतंत्र में ज्यादा सक्रिय होने के लिए प्रेरित कर सकती है। चाहे वो स्थानीय मुद्दों पर आवाज उठाना हो, या जानकारी हासिल करके सोच समझकर वोट देना हो, या समुदाय के कामों में हिस्सा लेना हो।
शिक्षा के उद्देश्य पर भी सोचने को मिलता है। क्या हमारी शिक्षा हमें सिर्फ पैसा कमाना सिखा रही है, या एक संतुलित, नैतिक और विचारशील जीवन जीना भी? क्या हम अपने अवकाश, मतलब अपने खाली समय का कुछ सार्थक उपयोग कर पा रहे हैं? या सिर्फ स्क्रीन पर ही लगे रहते हैं?
हाँ, ये बड़ा सवाल है। और कानून के शासन का सम्मान और बचाव करना, नेताओं के कामों को इस कसौटी पर परखना कि क्या वो सबके भले के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ अपने या अपने गुट के स्वार्थ के लिए, ये सब अरस्तु से मिले व्यवहारिक सबक हैं जिन्हें हम आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
बिल्कुल, इस पूरी बातचीत से मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये रही कि राजनीति को सिर्फ सत्ता की खींचतान या एक गंदे खेल के तौर पर ना देखकर उसे मिलकर एक बेहतर, एक गुणी जीवन बनाने की सामूहिक कोशिश के रूप में देखना कितना जरूरी है। ये राजनीति को एक ज्यादा सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण मायने देता है।
और मेरे लिए सबसे प्रभावशाली बात शायद ये है कि अरस्तु ने संतुलन, संयम और शिक्षा पर कितना जोर दिया। ऐसा लगता है कि ये तीन चीजें, मॉडरेशन, मिडिल पाथ और एजुकेशन, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये बातें आज की इस भागदौड़ भरी, अक्सर अतिवादी लगने वाली दुनिया में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समाज में, अपनी जिंदगी में इन मूल्यों को कैसे वापस ला सकते हैं। अरस्तु हमें सिर्फ अतीत का आईना नहीं दिखाते, बल्कि भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी देते हैं, है ना?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकित्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।